फिर उसके बाद अगली चीज़ भी बहुत अहम है। मेरा ख्याल है कि हमें आज इस पे बात करने की भी ज़रूरत है, और वो लोग जिनको कोई जिम्मेदारियाँ दी जाए, जिम्मेदारान। और मैं तो इस लफ्ज़ को पढ़ते ही डर गई हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 साल से हर जगह हमने अपने स्टेशंस जो भी हैं, अल्लाह की तौफीक से 7-8 जगहों पे स्कूल्स भी हैं हमारे यूरोप में, अमेरिका में, इधर उधर, तो जो मेन कोर टीम होती है ना, उसको मैं जिम्मेदारान के नाम से ऐड करती हूँ। यानी ग्रुप्स होते हैं, मुख्तलिफ हैं, कोई किसी लेवल पे है, कोई उससे छोटा है, कोई को, लेकिन जिम्मेदारान हर शहर के वो हैं जो मेन पर्सन है। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि अगर कोई गलती करे तो दिल करता है कि जिम्मेदारान से पहले गैर लिख दो बस। आपको किसी कोर्स की जिम्मेदारी दी गई, लोग पहले कोर्स इंचार्ज, हम खुद भी कहते थे कोर्स इंचार्ज, जब से लफ्ज़ इंचार्ज हटाया है मुझे लगता है कि बेहतरी आ गई है। इंचार्ज बन के तो बंदा पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, फिर वो कहते लो जी एक तो हम इंचार्ज हैं, एक हमारी मानते नहीं है। हम इंचार्ज नहीं है, हम जिम्मेदारान हैं, हम अंसारुल्लाह है। जब आपको मुझे कोई जिम्मेदारी मिल जाए और हम उसका हक ना अदा करें, हदीस में आता है जिम्मेदार लोग मैदाने महशर में इस तरह लाए जाएंगे कि इनके हाथ गर्दन के साथ बंधे होंगे। अल्लाह अकबर। अबू उमामा से ये रिवायत है मुस्नद अहमद में कि जो शख्स 10 या 10 से जायद लोगों के मामलात का जिम्मेदार बना दिया गया, क़यामत के रोज़ वो अल्लाह ताला के हजूर इस हालत में पेश होगा कि इसके हाथ गर्दन के साथ तौक की मानिंद होंगे। या तो इसका नेक तर्ज़ अमल इसे छुड़ा लेगा, या इसके गुनाह इसे हलाक कर देंगे। ज़रा इमेजिनेशन में लाए, कभी आपने मुजरिम नहीं बल्कि मुलजिम को हथकड़ियों में बंधे हुए जाते देखा हो, टीवी की स्क्रीन से ही कोई खबर देखी हो, मुलजिम को हथकड़ियाँ लगा कर ले जाया गया। तो जो जिम्मेदार है ना, जब क़यामत के दिन लाए जाएंगे तो पहले उनके हाथ बंधे होंगे पीछे, और यूं देखिए ना आप, जैसे आप देखिए यूं, अब पीछे हाथ दोनों जाके गर्दन के बांध दिए जाएं, तकलीफ़ भी है, फिर हिसाब होगा। अगर जिम्मेदारियां अदा कर दी, एक एक हाथ खुलता जाएगा, और अगर नहीं की तो फिर हाथ बंधे रहेंगे। बहुत मज़ा आता है लोगों को बड़ा बनने में। हमें जिम्मेदारी दें कोई भी, छोटे से बड़े काम की। याद रखिए, बुनियादी तौर पे आज हम लोग जिम्मेदाराना मिजाज के नहीं रहे। आप किसी को जिम्मेदारी दे के ज़रा इधर से उधर निकलते हैं, 2, 4, 6 दिन काम ठीक, फिर ढील ढलक्का। इल्ला आपसे पूछेगा, मैं नहीं पूछ सकती, ये आपका काम है। जिसने कोई जिम्मेदारी ली और उसका हक अदा ना किया, क़यामत के दिन वो जवाबदेही का शिकार होगा। सहाबा कहम खौफजदा हो जाते थे। आप कहते कि जब अबू बकर पे ये जिम्मेदारी डली या उमर पे डली, कांपने लगते थे, नहीं आते थे आगे। लेकिन चूंकि किसी ने तो करना है, तो क्या पता चला कि इन जिम्मेदारियों को खुदा खौफी के साथ लेना भी चाहिए और निभाना भी चाहिए। और फत्तकुल्लाह मस्तता, अल्लाह ताला उस पे डाल दे। फिर बहुत सारी और भी रिवायतें हैं जिस वक्त मौजू नहीं है, फरमाया कि किसी पर अगर उसके इज्तमाही मामलात की जिम्मेदारी डाली गई, फिर उसमें वो खुद को उस तरह ना खपाए जैसे अपनी ज़ाती चीज़ों के लेन देन में खपाता है, क़यामत के दिन रुसवाई का ज़रिया होगी। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, मस्जिद के टेक केयरर। अब मस्जिद में बैठ के मिसाल दे रही हूँ, अपने ऊपर ना लीजिएगा, मैं अपने स्कूल की मिसाल चले आपको देती हूँ। हमारे पास अल्लाह की तौफीक से नॉर्वे में भी एक स्कूल है। एक बल्ब अगर एक्स्ट्रा जल जाए, या रात को उस बंदे की गलती से खुला रह जाए जिसने एंड पे डोर लॉक किया, अगले दिन उससे जवाबदेही है। मैंने खुद अपने पर्स से निकाल कर उतने पैसे, बताओ ये रात भर अब जलता रहे तो ये कितनी को बिजली जली होगी, जितने क्रोन बनते हैं डाल के उनकी तरफ से सदके में डाल के दिखाया हुआ है, क्योंकि क़यामत के दिन ये स्कूल बोलेगा और हम चुप होंगे। और मैं इनको कहती हूँ, अब ये मत सोचा करें कि ये स्कूल खामोश है, ये क़यामत के दिन बोलेगा। आप मेरी चीज़ ले लें, मैं तो आपको शाम से पहले फ़ोन करूँगी, मेरा फ़ोन किधर है, लेकिन ये स्कूल नहीं बोलेगा। और ये जवाबदेही का एहसास दिए बगैर चीज़ें जिम्मेदारों के हाथ में दी नहीं जाती। आज अल्लाह के नाम पे चीज़ें बनती हैं, बहुत बनती हैं। लोग पैसा भी खुला देते हैं, कौन नहीं देता, मैं नहीं मानती लोग पैसा नहीं देते। आज आप एक आवाज़ निकालें कि हम यहाँ खैर का काम करने लगे हैं, मैं कहती हूँ खैर सिमटती नहीं है। लेकिन ज़िम्मेदारी का एहसास लेके ले, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है ये कि आप दीन के नाम पे माल लें और आप उसको अयाशियों में डाल दें। बस एक सादा सा असूल रख लें कि मैं अपनी ज़ात पे इस तरह लगाऊं, एक बल्ब की जगह 6 बल्बों की क्या ज़रूरत है, एक पंखा चल सकता है तो 6 की ज़रूरत है, एक मेहमान आया तो एक बोतल की ज़रूरत थी, आपने 6 क्यों मंगाई, क्या अल्लाह नहीं पूछेगा। याद रखिए, बैतुल माल इज्तमाही माल है, कोई नहीं रोक सकता आपको। सिवाय आपका तकवा। तो किसी इज्तमाई मामले में अगर आप ज़िम्मेदारान हैं तो आप उसके ऊपर अपने ऊपर इतनी सख्त नज़र रखें कि अल्लाह की बना, क्या अल्लाह पकड़ेगा, खुद पकड़े। हासबु कबला अंत हासबु, अपना हिसाब बंदा खुद ले ले। फिर अगला अमल जो क़्यामत के दिन रसवाइयों का ज़रिया होगा, ये तो पूरी उम्मत का इस वक्त मरज बन गया, और वो क्या है, अहद शिकनी, अल्लाह की पनाह। अब तो ये रिवाज बन गया, अब तो ये एक्सपेक्टेड है। पहले कहते हैं कि एक्सेप्टेड होता है, पहले कोई चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है फिर एक्सेप्ट हो जाती है। आज हमारे यहाँ अहद शिकनी एक्सेप्टेड भी है, एक्सपेक्टेड भी है। 6 बजे का कार्ड पे लिखा है, मतलब है लोग 8 बजे आएंगे। इज़ इट ट्रू? दर्स का फ्लायर लिख दीजिए 5:30, मैंने आज आके भी देखा है फ्लायर मस्जिद में, तो 5:30 मोटा मोटा लिखा है, लेकिन यहाँ नमाज थी। अब बेचारों ने क्यों लिखना है ये कि अगर लिखेंगे 5:45 नमाज के बाद तो लोगों ने कहना है ये इसका अंतर, ये 6 बजे के बाद शुरू होगा। मैं दिन रात इसी प्रोसेस से गुजरती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे वो टाइम दीजिएगा जिससे दर्स शुरू होना है। तो कहते हैं नहीं, लोगों को अगर वो टाइम दिया तो आप आएंगी तो आप ही होंगी, कोई नहीं होगा, लोग तो 1 घंटा लेट है। आप जो मर्जी अपने लोगों से, आप एक दफ़ा जो टाइम कहते हैं आप उस पर शुरू करते हैं, उठ जाए। आप दीन के नाम पे किसी को देखिए ना, आपको इधर हमने बुलाया, अल्लाह आपके दिल में ले आया, अल्लाह आपको लाया, सबका आना अल्लाह कबूल करे। क्या आप ये चाहते हैं कि 5:30 का टाइम लिखो और इधर आप आए और दर्स 6 o'clock शुरू हो? कोई आधा घंटा भी अपना बर्बाद करना चाहते हैं? तो फिर हम दूसरों को क्यों इस चीज़ का सबक देते हैं? तो हमेशा याद रखिए, अहद किए तो उसको निभा लीजिए। और किस तरह रसवाई होगी, हदीस सुन लीजिए कि अहद शिकनी करने वाले क़्यामत के दिन मैदान मक्शर में इस तरह आएंगे कि इनकी पीठ पर एक झंडा लगा होगा और उसके ऊपर लिखा होगा अहद शिकन। जितनी बड़ी अहद शिकनी की होगी उतना बड़ा, लोगों की गाड़ियों पर झंडे लगे देखे हैं ना, तो आप ज़रा सोचिए किसी की बैग पर एक छोटा या बड़ा झंडा हो। आप देखिए कि जैसी जितनी बड़ी अहद शिकनी होगी उतना बड़ा झंडा होगा। अबू सईद कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया क़्यामत के रोज़ हर अहद शिकनी करने वाले की सीरी, सीरी कहते हैं पीठ को, यानी बैक पर एक झंडा लगा होगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया, गोया के एक किस्म का साइन लगा दिया कि ये है झूठा। तो फिर आप और मैं क्या करें? आप वक्त के साथ जो कुछ चल रहा है ऐसे ही करते जाएँ तो फिर तो कभी भी नहीं चेंज होगा। किसी सिस्टर ने बताया कि उनके वालिद जब किसी को कोई टाइम देते थे तो अगर एक पाँव गाड़ी में है और दूसरा बाहर है तो गाड़ी चला देते थे। सगी बेटी को दूसरी बेटी के वलीमे पे छोड़ गए, सारे गाड़ी में बैठ गए, मैं गाड़ी उन्होंने स्टार्ट की, आ रही है बाहर से, वो आज तक रोती है कि मैं अपनी बहन के वलीमे पे नहीं गई। क्यों? कि जो गाड़ी बाप ने कह दिया चलानी चलानी है, वो वहाँ से लेके गाड़ी में बैठ रही थी उसे गाड़ी चला दी, अकेली मासियों के साथ घर में रही कि लेट क्यों आई हो तुम। चंद लोग अगर इस किस्म की तरबियत कर दें तो हम सारे ठीक हो जाए। आप इस चीज़ को नोटिस में लाएं अपने बच्चों से भी, और आप यकीन करें कि ये जो बात है, बस 5 मिनट रुक जाएं और 15 मिनट से पहले कोई नहीं जान छोड़ता, बस 2 मिनट बात सुन लें जी, बस मुझे 1 मिनट आपका लेना है, और जब कॉल ख़त्म होगी ना तो 4, 6 या 10 मिनट लग चुके हों। और ये मिजाज बदलने की ज़रूरत है, वाकई हमारा एक कौमी मिजाज बन गया। इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि हम फ्लेक्सिबल हो गए, हमें दूसरे का भी नहीं बुरा लगता, लेकिन ये बुरा है। आप कहते हैं कि सिर्फ 1 मिनट लेट हो ना तो आपकी बस मिस हो जाएगी और आप अगली ट्रेन नहीं ले सकेंगे, कनेक्शन लूज़ हो जाएगा आपका। बाहर के मुल्कों में घड़ी देखे बगैर आप सिर्फ बसों के रूट्स के साथ टाइम देख सकते हैं। आपने यहाँ से सिटी जाना है ना तो वो आपको एक रूट दिखाएंगे, ये बस लेनी है, वहाँ से उतर के आपने ट्रेन लेनी है, ट्रेन से आपने 3 मिनट चलना है और उसके बाद फिर आपने कोच पर बैठ जाना है, मिसाल दे रही हूँ। और घड़ी बंद करके आप चले जाइए, वो ऐसे ही चलेंगे, और अगर आपने पहला कनेक्शन छोड़ा अगले दोनों ख़त्म हो जाएंगे। वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं करते? नॉर्वे जैसा मुल्क जहाँ एक्सट्रीम वेदर होता है 6 महीने तकरीबन, आज तक वो कहते हैं कि हमारी कोई प्लेन, कोई फ्लाइट लेट नहीं हुई, कैंसिल नहीं हुई स्नो की वजह से। तो क्या अल्लाह ने कोई उनको स्पेशल दिमाग दिए हुए? आज मैं भी ठीक हो सकती हूँ, आज हम सब ठीक हो सकते हैं, सिर्फ माइंड सेट करने की देर है। आजकल शादियों पे एक रूल चल रहा है कि 10 बजे लाइटें बंद हो जाएंगी, माना जा रहा है ना, कई साल से देख रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा। जब ये माना जा रहा है तो बाकी जगहों पे क्यों नहीं माना जाएगा? तो इसको हम आदत बनाए, ठीक है ढीले हो गए ना तो फिर सख्त हो जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे आगे करते जाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से आसानी होगी। फिर अगला शख्स जो रुस्वा किया जाएगा क़यामत के दिन, वो है वो शख्स जिसकी एक से ज़ायद बीवियाँ हों और वो उनके बीच में इंसाफ ना करें। दो बीवियों को रखने वाला एक की तरफ अगर अपनी तवज्जो ज़्यादा रखता है, हदीस सुन लीजिए, मुझे लगता है कि इसके बाद तो फिर वही दूसरी शादी करेगा कि जो इतना इंसाफ कर सकता है, उसका आधा जिस्म मफलूज होगा, फालज पड़ा होगा उस शख्स पे जिसकी दो बीवियाँ थी और उसने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। अबू हुरैरा की रिवायत है अबू दाऊद में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स की दो बीवियाँ हों उनमें से एक की तरफ झुक जाए, मुराद जय के अदल से काम ना ले, तो क़यामत के दिन ऐसा आएगा कि उसका आधा धड़ गिरा हुआ होगा, यानी फालिज ज़्यादा होगा। जो अल्लाह से डरने वाले हैं इसी वजह से बहुत सारे लोग दूसरी शादी से रुके होते हैं। आपको पता, खुद अल्लाह के नबी घबराते थे, अल्लाह के नबी ये मेरी बीवियाँ हैं, मैं इनसे अपने हिसाब से अदल करता हूँ, फिर भी मेरा दिल आयशा की तरफ झुकता है, मुझे उस पर ना पकड़िएगा। तो ये एक बहुत इंसाफ की बात है। हमारे यहाँ दूसरी शादी के नाम पर यूँ मुस्कुराहटें आती हैं और मूछों पर बल देते हैं, लेकिन जब पकड़ होती है तो समझने आता है। फिर उसके बाद आप देखिए अगला अमल जुल्म। ये तो हम सरासर हकूकुल इबाद से मुतल्लिक देखें, दूसरों पे किसी रंग में भी जुल्म कीजिए, क़यामत के दिन ऐसा शख्स अंधेरों में होगा। अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया अज़ुल्मु ज़ुलुमात यौमल क़ियामा, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का ज़रिया होगा। मासियों पे जुल्म, छोटे छोटे लड़कों पे जुल्म जिनको घरों में रखा होता है, और जानवरों पे जुल्म, और किस पे जुल्म होता है, बहुओं का सासों पे, सासों का बहुओं पे। ज़र ख़रीद है आप, इनको मासी बना कर लाएँ, आप इसकी बेइज्जती करने के लिए लाएँ। और अगर आप अपोजिट हैं, अगर आप बहुओं के सास के सब बदतमीज़ी करें, तो ये सिला दिया आपने उस औरत को कि एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करके आपको दिया, और आप उसकी माँ को अब एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं समझते। मैं सोचती हूँ कि इंसानी मामलात इतने सख्त हैं कि वाकई जिसको जितनी कम जिम्मेदारियाँ मिली हैं वो अल्लाह का शुक्र करें, क्योंकि क़यामत के दिन पुल सरात का आखिरी हिस्सा जिसका नाम कंतरा है, वहाँ पे वो लोग रोक लिए जाएंगे जिनके इंसानों के साथ अभी मामले पड़े होंगे। अल्लाह ने पीछे से सारी इजाज़त दी, जैसे ही कि सारी सिक्योरिटीज़ चेक करके आप जहाज़ के गेट पे पहुँच गए, लेकिन वहाँ आपको रोक लिया गया कि ठहर जाए जी, आपकी कोई गड़बड़ है, आप नहीं जा सकते। तो लिहाजा दूसरों पे जुल्म करते हुए बचें। और याद रखिए हमारे पास इख्तियार है, माल है, दौलत है, ओहदा है, हम जुल्म कर सकते हैं। आज तो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप किसी को घर दे दें किराए पर, फिर देखिए ज़रा जुल्म क्या होता है, तख्ते भी तोड़ के ले जाएंगे आपके घर के। अब दे दिया, अब मांगे हमसे किराया, सीधी सी बात है, कहते हैं पाकिस्तान में कोई किसी को किराया नहीं देता, आखिर में इकट्ठा करके फिर कोई पुलिस को बुलाएं और उसको रिश्वत दे के निकालते हैं तो निकालें कैसे। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने हमें आजमाइशों से अभी तक बचाया हुआ है। आप कहते हैं आजमाइशें बड़ी आती हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह का सब्र और तहम्मुल बहुत है। फिर उसके बाद अगला शख्स जो कि क़यामत के दिन रुसवा हो रहा है, चोर। मैदान हशर में चोरी का माल अपने कंधों पर उठाए हुए आएगा, सबको पता लग जाएगा ये चोर है। और उबादा बिन सामित से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने ज़कात का माल वसूल करने के लिए मुकर्रर किया और उनसे कहा कि अबुल वलीद, ये उनकी कुनियत थी कि माल ज़कात में अल्लाह से डरते रहिएगा, क़यामत के दिन इस हालत में मत आना कि अपने कंधे पर ऊँट उठाए हो जो बिल बुला रहा हो, या अपने कंधों पर गाय रखी हो जो डकार रही हो, या कोई बकरी रखी हो जो मिमिया रही हो। क्या मतलब? और कहा ये सारे जानवर तुम्हारे सर पे, और तुम मेरे पास आओ और मुझसे आके ना कहना कि सिफारिश करो। तो उबादा बिन सामित कहते हैं अल्लाह के नबी, क्या माल ज़कात में खुर्द बुर्द का ये इंजाम है? अब माल ज़कात से मुराद है कि इज्तमाई माल, आपने दीन के नाम पे माल जमा किया, अब उसमें खुर्द बुर्द शुरू हो गई। टैक्सेस का माल, इज्तमाई माल तो ऐसे ही होता है ना, हुकूमती सतह पर या किसी इदारे की सतह पर कोई माल लिया और उसमें अपनी मर्ज़ी से इधर उधर की चीज़ें कर दी, कहा उसका ये इंजाम होगा? आपने फरमाया हाँ उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यही इंजाम होगा। उबादा बिन सामत कहते हैं फिर अल्लाह के नबी, वो ज़ात जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैं आज के बाद कभी आमिल नहीं बनूंगा। आमिल किसको कहते हैं? जो कहाँ है कुरान में, आयत 160 है ना सूरत तौबा की, वल आमिलीन, ज़कात की वसूली करने वाले कारिंदे जो होते हैं उनको आमिल कहते हैं। तबरानी की यह रिवायत है। फिर अगला भी इशू आज फिर हमारे मुल्कों में दिखेगा। नेक्स्ट थिंग, पेशावर भिखारी, बैगर्स, स्ट्रीट बैगर्स जिसको आप कहते हैं, क़यामत के दिन इस तरह आएंगे कि उनके मुंह पर गोश्त नहीं होगा। حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے روایت ہے اپنے باپ سے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا یہاں تک کہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی نہیں ہوگی. اسے مسلم نے روایت کیا. اب یہاں آپ کو میں ایک پریکٹیکل چیز بتاؤں. الحمدللہ ہم میں سے تو کوئی بیگنگ نہیں کرتا, لیکن یہاں سے نیچے نکل کر گاڑی میں بیٹھنے تک ہی آپ کو دکھ جائیں گے. بعض دفعہ آپ کسی ضروری کام کے لیے گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ کا شیشہ توڑ توڑ کر دیکھیں گے, گاڑی کسی سگنل پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر خام خواہ کا ایک احساس جرم ہمیں دیتے ہیں کہ ہم اتنے بخیل لوگ ہیں کہ نہیں دیتے, اور ایک کو دے کے تو دیکھیں چھ اور آ جائیں گے, کیا کریں؟ آپ سوال میرا یہ آپ سے جواب دینا چاہتی ہوں کہ ایسے بیگرز کے ساتھ کیا کریں, یہ تو اسلام ہی نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں کینڈیز, سستی سستی کینڈیاں ہوتی ہیں, گھر سے نکلیں تو فریج کھول کے دیکھ لیں, کوئی سیب کوئی کینو کوئی ایسی چیز کھانے کی پڑی ہوئی ہے وہ رکھ لیں. اسی طرح کوئی چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں, کسی میں گیہوں, کسی میں چاول, کوئی دال ہے, کوئی فالتو چیز, کوئی مرچ, وہ گاڑی میں ہمیشہ اپنے پاس بیگ رکھا کریں. جب کوئی ایسا بندہ آپ کو ملے فوراً آپ اس کو, وہ بچہ ہے تو اس کو کینڈی دے دیں, بوڑھا ہے تو فروٹ دے دیں, کوئی عورت ہے تو اس کو گھر کے استعمال کی چیزیں, پیسے نہیں دیں. مجھے اسی ٹرپ میں کسی سے, ظاہر گاڑیوں میں سفر ہوتا رہتا ہے تو راستے میں لوگ بات کرتے ہیں, بتاتے ہیں, کہتے ہیں جگہ بکی ہوئی ہیں, 20,000 روپے ایک ایک جگہ کا کرایہ دیتا ہے ایک بیگر, اور وہ ٹیکسی ڈرائیور بتا رہا تھا کہ میں اس کو کتنے سال سے ہر دن ادھر ہی دیکھ رہا ہوں. اور ایک شخص کسی جگہ کھڑا ہوتا تھا, وہاں نہ ملا, کچھ عرصے کے بعد کہیں اور گیا تو اس کو ایک شخص ملا, کہا رہے تو وہی ہے جو وہاں ہوتا تھا. کہا ہاں, اب ادھر کیوں آ گیا؟ کہا وہ جگہ میں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دی ہے, کہ اب تو وہاں کھڑی ہو کے کما لے. آپ سوچ سکتے ہیں, میں تو بدگمان ہو جاتی ہوں کہ ایک مسلمان اور اللہ کی بجائے بندوں سے مانگے, نہیں پیسہ نہیں دے. آپ یاد رکھیے, جس کو عادت پڑ جاتی ہے اس کا تو کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا. پچھلے اتنے سالوں سے ان کا نہیں بنا. ہم کراچی میں تھے پچھلے سال, تو ایک عورت تھی تو اس کے گود میں ایک بچہ تھا چھوٹا سا نا, اس کا دھڑ نیچے سے ننگا تھا. ہم ایسے کسی کام سے گزر رہے تھے, ہمارے ساتھ بابا بھی تھا, گاڑی میں میرے پاس بیگ پڑا, تو مجھے کہتے اس میں سے کوئی کپڑا مجھے دے دو. میں نے کہا کیا مطلب, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کچھ بھی کپڑا دے دو. میں نے کہا کیا کرنا ہے آپ نے؟ تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ باہر ایک عورت کی گود میں بچہ ہے, بھکارن ہے, تو مجھے کہہ رہے ہیں اس بیگ میں سے کوئی بھی اپنا دوپٹہ کپڑا دے دو, میں جا کے اس کو کہوں کہ بچے کو باندھ لے. میں نے کہا یہ تو کوئی تھوک نہیں بنتا. خیر میں باہر نکلی, سامنے ایک دکان تھی بچوں کے ریڈی میڈ کپڑوں کی, میں وہاں گئی, میں نے بچوں کے سائز کا جو بھی خریدنا چاہا, تو ایسے ہی میں سائز پوچھ رہا تھا بچے کا, تو میں نے کہا کہ وہ سامنے ایک عورت ہے اس کے سائز کے بچے کا کوئی دے دو کپڑا, کوئی ٹراؤزر کچھ بھی. کہتا ہے باجی آپ ادھر اس کو دے کے جائیں گی نا, تھوڑی دیر بعد وہ ہمیں بیچنے آ جائے گی. خیر ہم نے ایک لیا ادھر سے, پھر اس کے پاس گئے, اس کو کہا پہناؤ. کہتی نہیں بعد میں پہناؤں گی. میں نے کہا نہیں ابھی پہناؤ, تیرا پہنا ہوا تو کوئی نہیں لے گا نا. اب جب اتنا ظالم ہو جائے ایک غریب انسان تو باقیوں کی کیا بات ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز, یہ اگر غریبوں کی بات تھی تو اگلی امیروں کی رسوائی ہے, اور وہ تو زیادہ ہی سخت ہوگی, ریاکاری اور دکھاوا کرنے والا. حشر میں ایسی شدید سزا دی جائے گی کہ ساری مخلوق میں اس کا چرچا ہو جائے گا قیامت کے دن. اللہ کے نبی سے یہ روایت مستورد ہیں, صحابی ان سے ملی, کہا کہ جو شخص کسی وجہ سے ریا اور دکھاوے کے مقام پر کھڑا ہو, قیامت کے روز اللہ اس کو ایسے مقام پہ لا کے کھڑا کریں گے جہاں اس کا خوب ریا اور دکھاوا ہو رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے. اپنے لیے پہنیں, اپنے لیے خوش ہوں, نہ دکھاوے کے لیے کریں نہ دوسروں کو جلانے کے لیے کریں. اور ایک ایک لاکھ کا جوڑا اپنے لیے تو نہیں بنتا, وہ تو پھر دکھاوے کے لیے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست کر دے. پھر اسی طرح کسی پر زنا کی تہمت لگانے والا, اس کو قیامت کے دن قذف کی سزا ہوگی. آپ کو پتا ہے قذف کیا ہے؟ 80 کوڑے. قیامت کے دن ان کو وہاں کھڑا کر کے کوڑے لگائے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ ابو القاسم نے فرمایا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے, جو شخص اپنے غلام پر زنا کی تہمت لگائے اس پر قیامت کے روز حد جاری کی جائے گی, الا یہ کہ وہ اپنی بات میں سچا ہو. یہ مسلم کی روایت ہے. اور آپ سوچئے دنیا میں کسی کو کوڑے لگیں تو وہ کتنا زیادہ دوسروں کے سامنے ہو. اب میں اور آپ کیا کریں؟ زپ یور ماؤتھ, مت بولیں اس کی بیٹی خراب ہے, اس کا میاں خراب ہے, اس کا اس سے چکر ہے, اس سے کیا ضرورت ہے آپ کو. مجھے دعا کر دیں, اصلاح کر دیں, امر بالمعروف کر دیں اور خاموش رہیں. پھر اگلی چیز, ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا. تکبر کے ساتھ جو مرد اپنی شلوار کا کپڑا نیچے کرتا ہے, اسی طرح احسان جتلانے والا और झूठी कसम खाकर माल बेचने वाला, इन तीनों पे एक ही रिवायत है, अबू ज़र से है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तीन लोग ऐसे हैं जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना कलाम करेगा। और आप पता है कलाम जिससे ना हो कौन होता है? वो नाराज़गी की आखिरी हद है। पहले माँ खूब बोल बाल लेती है, गुस्सा करती है, धमकियाँ देती है, आखिर में कहती है जा चला जा मेरे से बात ना करना, कलाम ना करे, और उसकी तरफ देखेगा नहीं। सबको देखना है, इनको नहीं देखना, और ना उनको गुनाहों से पाक करना। और चौथी सजा के अजाब अलीम है। और फरमाया, ये टखनों से कपड़ा नीचे लटकाने वाले, यानी एहसान करके जितलाते हैं और झूठी कस्में खा के माल बेचते हैं। कहीं हम तो नहीं मासियों को देकर बाद में जितलाते ही रहते, तुम हो ही नमक हराम, मुझे पहले ही पता था। और अगर बेचारी 2-3 हज़ार रुपये ले गई आपसे एडवांस में और फिर अगले ही दिन ना आई, तो फिर देखिए जो आप उसके गुन गाते हैं। मत बोलिए, ना दें, आप मत करें मदद किसी की अगर आप संभाल नहीं सकते तो, लेकिन जो एहसान ना जतलाएं। फिर इसी तरह से बूढ़ा जानी, रियाया के साथ झूठ बोलने वाला हुक्मरान और मुतकब्बिर फकीर, ये सब भी अल्लाह की रहमत से क़यामत के दिन महरूम होंगे। ये मुस्लिम की रिवायत अबू हुरैरा से। फिर इसी तरह दो अमल ऐसे हैं कि जिनके करने वालों को क़यामत के दिन रुस्वा किया जाएगा। उस जगह दूसरों से पानी को रोक लेना जहाँ पानी ना हो। गाड़ी में बैठे हैं, बस में, आपके पास पानी है, पीछे को बच्चा रो रहा है, माँ है, बूढ़ा है, और आपसे वो मांगे और आपको नहीं, मैं नहीं दे रही, भी तो पता नहीं मैंने भी कितना सफ़र करना है, मेरा ही ना ख़त्म हो जाए। इसी तरह माली मुफाद के वजह से हुक्मरानों का साथ देना, अपने फ़ायदों के मतलब के साथ लोगों को वोटिंग करना, ये सब लोग क़यामत के दिन रुस्वा किए जाएंगे। अबू हुरैरा की रिवायत है कि तीन लोगों से अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, ना उनकी तरफ नजर करम करेगा, ना उनको पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। एक वो जो जंगल में ज़रूरत से ज़ायद पानी रखता हो और मुसाफिर उससे पानी मांगे लेकिन वो ना दे। दूसरा वो शख्स जिसने असर के बाद झूठी कसम खाकर अपना माल बेचा। ये क्यों, असर के बाद क्यों? आप देखिए, ये जो वक्त है ना, ये असर के बाद का वक्त है। दिन जा रहा होता है, घबराहट होती है, जल्दी जल्दी जाना है, ऐसे वक्त में धोखा बहुत जल्दी में होता है। और कसम क्या खानी, मुझे तो इतने का पड़ता ही नहीं है, झूठ बोल देना। फिर इसी तरह जो शख्स दुनियावी लालच के लिए हुक्मरान की बैत करे और दुनियावी अगर फ़ायदा ना मिले तो बेवफाई कर दे, ये मुस्लिम की रिवायत है। और एक चीज़ फिर उसके बाद, वालदैन का नाफरमान। आप और मैं अपने ऊपर लेकर सोचे, ये भी अल्लाह की रहमत से महरूम हो गए। फिर सब मर्दों से मुशाबहत करने वाली औरत और दयूस। दयूस कौन है? जो अपने घर वालों में बुराई देखे और आगे से कुछ रिएक्शन ना लें, जिना की तरफ इशारा है। इब्ने उमर से रिवायत है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला तीन लोगों की तरफ नजर करम नहीं करेगा, वालदैन का नाफरमान, मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली और दयूस। और आप ज़रा से इस सारे को लेकर अपने ऊपर लीजिए। आप देखिए कि आप कहते हैं कि ये अमल है, अच्छा चले ठीक है, इसके वाकई तो ठीक है ना। आप अपने ऊपर लेकर सोचिए, क्या मैं और आप क़यामत के दिन बाइज़्ज़त लोगों में खड़ा होना चाहते हैं? हम में से कौन है जो नबी सल्लम के पास नहीं खड़ा होना चाहता? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली सबके साथ होना चाहते हैं, तो क्या ये अमल करके हम उनके पास खड़े हो सकते हैं? हर उस अमल से अपने आप को बचाइए कि जो रसवाई का ज़रिया बने। दुनिया में आप किसी की रसवाई का ज़रिया बनते हैं, बेइज्जती करते हैं, वहाँ ज़रूर होगी। कहते हैं इंग्लिश में टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप और मैं अपने लिए इन सारी बातों को सुनने के बाद ये अमल की दुआ करें, नियत करें कि मालिक हमें दुनिया में हर उस अमल से, हर उस काम से रोक ले जो क़यामत के दिन की रसवाई का ज़रिया बने। दुनिया में भी नियम पसंद करते हैं, भरी महफिल में कोई आकर हमें जलील कर दे। और आप याद रखिए कि ये सारी चीज़ें आम कब होंगी? जब इल्म आम होगा। आज हमने सिर्फ कुरान की आयतें और हदीसें ली, और मोस्टली हदीसें थी, एक आध सिर्फ आयत थी। आप इस कुरान और सुन्नत के इल्म को आम करें, चोरियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। आज मेरा हाल है, हमने तकरीबन 15 चीज़ें ली हैं, कोई गिन रहा था तो बता दें, 18 टोटल चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि जो रसवाई कर रही होंगी। क्या आपके मेरे मुल्क में चोरियाँ हो रही हैं? क्या बैगिंग है ना, लोग रियाकारी कर रहे हैं? तो फिर ये इल्म किसने देना है उनको? हमने देना है। हर बात के एंड पे यही बात मेरे भी दिल में आती है, आपको भी इसी की दावत दूंगी कि सच्चा इल्म लीजिए। आप इधर उधर की बातें और रिकोसले और झूठी बातें और फजीलतें और वो बातें छोड़कर डायरेक्ट टेक्स्ट से कुरान और हदीस का इल्म लें। अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। तुबखाना कल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।